श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय दो श्लोक संख्या एक महाराज अग्निद्र का चरित्र। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्ट प्रायशवद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय दो श्लोक संख्या एक। श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान अग्निद्र जम्ब दिव औकश प्रजा औरस बतत्वत धर्म अवेक्ष मान पर्ज गोपायत श्रीशुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तत् अनुशासने वर्तमान अग्निद्र जम्ब दिवौकश प्रजा औरसवत धर्म अवेक्ष मान पर्ज गोपायत। एक टीका की भाती है श्लोक शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी उवाच बोले एवं इस प्रकार पितरी जब उसके पिता ने संप्रवृत्ते मुक्ति मार्ग ग्रहण किया तद अनुशासने उसकी आज्ञा अनुसार वर्तमान अग्निद्र राजा अग्निद्र जम्ब दीपोकश जम्बोदीप के स्वामी प्रजा नागरिक और अशोबत अपने पुत्र के समान धर्म धार्मिक नियम अवेक्षमान कठोरता से पालन करते हुए पर्जगोपायत पूर्णतया सुरक्षित। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने ही पुत्र के समान सुरक्षा प्रदान की। कृपया अनुवाद धरिए। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियम के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने ही पुत्र के समान सुरक्षा प्रदान की। तात्पर्य, महाराज अग्निद्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत के आज्ञा अनुसार धार्मिक नियम का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो हम इस अध्याय का जो संक्षेप में प्रभुपाद जी बताया यहाँ पर, तो उसको पहले पढ़ते आप कृपया धनी सुनिए। इस अध्याय में क्या है, ये अध्याय का नाम है महाराज अग्निद्र का चरित्र। तो इसके बाद हम तात्पर्य में जाएंगे। इस अध्याय में महाराज अग्निद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार के हेतु चले गए तो उनका पुत्र अग्निद्र उनके आज्ञा अनुसार जम्बूद्वीप का शासक बना, जिसने इसके निवासियों का पिता की भांति स्नेह के साथ पालन किया। एक बार महाराज अग्निद्र को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतो ये मंदराचल की गुफा में तप करने के लिए प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने अग्निद्र की कुटी में पूर्व चित्ति नामक स्वर्ग की एक कन्या भेजी। वो अत्यंत आकर्षक वेश बनाकर विविध प्रकार की स्त्रियोचित हाव भावों के साथ उनके समक्ष आई। अग्निद्र स्वभावतः उच्च आकर्षित हो उठे। उस कन्या की गोती हाव भाव मुस्कान मृदु वचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी। अग्निद्र चापलूसी में पोटु थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वह भी उनके मृदु वचनों में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। स्वर्ग में अपने लोक लौटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक अग्निद्र सहित राज सुख भोगा। उसके गर्भ से अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्मक, हिरणमय, कुरु, भद्रास तथा केतुमाल थे। उन्हें उनके नाम वाले क्रमशः 9 द्वीप प्रदान किए, किंतु अग्निद्र की इंद्रिया तुष्ट नहीं हुई थी, अतः वे जा अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में स्वस्थ रहते थे, इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए। अग्निद्र के मृत्यु के पश्चात उसके 9 पुत्रों ने मेरु की नौ पुत्रिया से विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लोता, रम्मा, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थे। ये इस अध्याय के संक्षेप है और इस अध्याय का आज का पहली श्लोक है। जिस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियम के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने ही पुत्र के समान सुरक्षा प्रदान की। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज अग्निद्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञा अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बूद्वीप के निवासियों पर राज्य किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में वे नियम पूर्णतया विरोधी हैं। यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की ऐसे ही देख रेख करता था जिस प्रकार पिता अपने ही पुत्रों की करता है। यह भी बताया गया कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार धर्म अवेक्ष मानो अर्थात धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए राज्य किया। किसी शासक के लिए यह आवश्यक है कि वो देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोर पालन करती है। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य भगवान द्वारा प्रदत्त नियम से है। धर्म का पहला नियम है भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्य का पालन। व्यक्तियों के गुण तथा कर्मों के अनुसार समाज के पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में और फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित किया जाता है। वह धार्मिक नियम है और राज्य के मुखिया राजा का यह कर्तव्य है कि वो देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। उसे कोरे अधिकारियों के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्र का सदैव हितैषी होता है। ऐसा पिता इसका पुत्र ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और कभी कभी वो उन्हें दंड भी देता है। उपयुक्त नियमों के विपरीत कलि युग में राष्ट्रपति तथा प्रधान शासकगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं, जिन्हें उसके तनिक भी प्रभाव नहीं रखती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। शास्त्र यह है कि आज के प्रधान शासकगण सभी प्रकार के पापमय कार्यों का विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशुवध तथा दूत क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। आजकल भारत में वे पाप कर्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यद्यपि एक शताब्दी पूर्व वे चार दुर्गुण भारतीय परिवार में पूर्णतया वर्जित थे, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैट हो चुकी है। अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्यों कर वसूलने के विज्ञापन में अधिक और नागरिकों के धार्मिक कल्याण के प्रति कम ध्यान देता है। जब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है, श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है कि कलि युग में शासन द्वारा दस्यु धर्म चलाया जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि चोरों और उचक्कों द्वारा शासन। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उचक्के ही हैं जो नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उनको लूटते हैं। यद्यपि चोर तथा उचक्के कानून की अवहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलि युग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एक दूसरी भविष्यवाणी जिसे पूरा होना है वो है कि नागरिकों तथा शासन के पाप कर्मों से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा, लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और उनके सद्वृत्ति वाले मनुष्य और अनेक सद्वृत्ति वाले मनुष्य अपने गृह का त्याग कर देंगे, क्योंकि अकाल कर तथा अनावृष्टि से वे अत्यधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसा विनाश से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के वास्तविक कल्याण हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक आंदोलन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদান সগুণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতম চ নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রসারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত শ্রীরাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণামামি হরি প্রিয়ে নম মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামিনে গৌরত্তিশে নম বংশাকল্পতরুভ্য কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ। মহারাজ অগ্নিদ্র কা চরিত্র আজকে অধ্যায় কা পহলি শ্লোক হ্যাঁ। তো মহারাজ প্রিয়ব্রত কে পুত্র মহারাজ অগ্নিদ্র, মহারাজ প্রিয়ব্রত হাম পহলে পিছলে চ্যাপ্টার মে শুনা হ্যায় মহারাজ প্রিয়ব্রত ভগবান কে মহান ভক্ত থে আর ভক্তি মে ইতনা শক্তি প্রিয়ব্রত নে প্রাপ্ত কিয়া থা কি উননে ইস ভূমণ্ডল কো আপনার রাত কি চাকা সে সাত ভাগ মে বিভাজিত কিয়া থা। তো রাজা দেখিয়ে আপনার রাজ্য মে সীমারেখা বানাতে কিউকি উননে আগে যাকে আপনার পুত্র কো এ দ্বীপ বাড় দিয়া শাসন ভার বাড় দিয়া। তো যাব শাসন ভার বাড় দেতে হ্যাঁ তো উননে সীমারেখা বি তয় কিয়া যে এক দোসরা সীমারেখা কো উলঙ্ঘন না করে, নিশ্চয় অরাজকতা না ফেলে, ঝগড়া না হো, ফাইটিং না হো, ইসলিয়ে উননে সীমারেখা তয় কিয়া। আর আজ ভি ইস ভূমণ্ডল মে যে বিজ্ঞানী লোক উন সীমারেখা কো পার নহি কর পাতে, যো কি হাম তো লবণ সমুদ্র সে ঘিরা হুয়া হ্যায় এই ভৌতিক সীমারেখা এইসা সীমারেখা উননে বানায়ে প্রিয়ব্রত কি ও সীমারেখা জেসা কি লবণ সমুদ্র সে ঘিরা হুয়া উসকে বাদ যো ক্ষীর সমুদ্র সে ঘিরা হুয়া দ্বীপ হ্যায় ইস প্রকার সাত দ্বীপ হ্যায়। তো ইতনা মহান ভগবানকে ভক্ত যো এইসা সীমারেখা তয় কিয়া হ্যায় যো কই নেই পার কর সকতে। আর আভি বর্তমান মে ইস জম্বুদ্বীপ কা যো শাসন ভার অগ্নিদ্র কো দিয়া হ্যায় তো এই অগ্নিদ্র নে বাতায়া যাতা হ্যায় কি মহারাজ প্রিয়ব্রত যো বহুত কাম বাসনা মে আপনা স্ত্রী কা সাথ সঙ্গ কিয়া থা উসি টাইম অগ্নিদ্র কা জন্ম হুয়া থা, জিসকে কারণ অগ্নিদ্র কা মন মে কুছ ভৌতিক কামনা হ্যায় আদারওয়াইজ এক শুদ্ধ ভক্তকে সন্তান হি শুদ্ধ ভক্ত বানতে ভগবানকে জেনারেলি, লেকিন ইয়াপর বিশেষ হ্যায় অগ্নিদ্র যো কি থোড়াসা ভৌতিক সুখ কামনা করতে হ্যাঁ। তো ইয়াপর অগ্নিদ্র নে ইস শশাগরা পৃথিবী কো শাসন কিয়া, ইস জম্বুদ্বীপ কো শাসন কিয়া, কিস প্রকার শাসন কিয়া ইয়াপর বাতাতে হ্যাঁ কি ঔরসবত, ঔরসবত এক রাজা হতে হ্যাঁ রাজা কো এইসা হোনা চাইয়ে যে ইয়াসে বহুত পূর্ব যে রাজা হতে তে ইয়াসে শ সাল পূর্ব ইয়া প্রভাজী বাতাতে শ সাল পূর্ব পূর্ব মে ভি ইস ভারতবর্ষ মে ইভেন দেখা যায় তো শ সাল পূর্ব মে ভি ভারতবর্ষ মে 90% ভেজিটেরিয়ান থে সব লোক 90% ভেজিটেরিয়ান থে আর এ শ সাল মে ইতনা অপোজিট হো গিয়া আপসাইড ডাউন হো গিয়া আমি 10% ভেজিটেরিয়ান প্রাপ্ত হতা 10 টু 15% সিফ ভেজিটেরিয়ান হ্যায় আর বাকি सब नॉन वेज बन गया। इसका कारण क्या है? ये कारण है ये अपशिक्षा। अपशिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन, जो बाहर से आया हुआ जो शिक्षा है, जो मेडिकल साइंस, बाहर का मेडिकल साइंस आया है, और जो टीवी आदि इत्यादि, जिसके कारण भारत में वो शिक्षा प्रवेश किया है कि अगर आप ये नहीं खाओगे तो ये प्रोटीन कम पड़ेगा, ये दवाई नहीं खाओगे तो ये नुकसान होगा। उसके कारण भारत में पूरा जो धर्म, जो वेजिटेरियन 85% वेजिटेरियन थे 6 साल पूर्व, और अभी 6 साल बाद में पूरा अपोजिट हो गया। ओनली 15% वेजिटेरियन बचा है, बाकी सब नॉन वेज बन गया। तो इधर और यहाँ से आप सत्य युग की बात है, बहुत दूर की बात है। उस टाइम में जैसा पृथु महाराज के शरीर से उत्पन्न जो निषाद, जो पापी थे, पापी के लिए जो काला प्रकार के व्यक्ति, जो चोर व्यक्ति, डाका डालना, दूसरा को धन लूटना, उस प्रकार एक प्रकार जात उत्पन्न हुआ था उस टाइम। पाप पुरुष के बेन महाराज के शरीर से एक पाप पुरुष के भांति वो एक निषाद जात उत्पन्न हुआ, और वो निषाद जात के लिए उस टाइम विशेष करके जंगल दिया गया, जो जंगल में जाके रहे, और वो लोग सीधा जंगल चले गए। इसलिए गुण और कर्मों के अनुसार व्यक्ति अपना अपना कर्म करने के लिए बाध्य है। और भगवान ने भगवद गीता में बताते चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो ये जो चतुर्वर्ण भगवान ने बनाते हैं, बनाया गुण और कर्म के अनुसार। तो गुण और कर्म देखिए, ये वर्णाश्रम धर्म जो है, प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने न्यूयॉर्क से इस आंदोलन को शुरू किया। उनका मन में, उन्होंने जानते थे जो कलयुग में क्या होने वाला। उन्होंने एक मृदंग, एक छोटा सा ड्रम लेके 3 घंटा तक टॉमकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने लगे, और एक एक करके सारा विदेशी भक्त लोग आए, और उन्होंने धीरे धीरे इस कृष्ण भक्ति को प्रचार फैलाया। फिर 26 एवेन्यू में मैसलेस गिफ्ट शुरू किया वहाँ से। तो इस प्रकार आगे उन्होंने अलग अलग देशों में उन्होंने इस प्रचार कार्य के लिए भक्तों को भेज दिया। उन्हें जानते थे जो कलि युग में जो वर्ण आश्रम जो है, क्योंकि वर्ण जो आश्रम है भगवान के बनाया हुआ है, तो ये जो वर्ण आश्रम है आजकल विकृत रूप से है। जैसे इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपुल, वो आज हर समाज में है, हर देश में है। प्रभुपाद जी बताते हर देश में वो है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण शरीर का सिर है, लेकिन शरीर का हर अंग जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार ये जो वर्ण और जो आश्रम, ये सब मिल के एक समाज है। इसलिए ये जो शरीर है, समाज रूप शरीर में हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। तो जो वर्ण है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न है, तो ब्राह्मण समाज के सिर है, और वो लोग इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपुल। आज भी हर जगह में इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपुल है। और क्षत्रिय है जो कि शासन करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो समाज को प्रोटेक्शन देते हैं, युद्ध करते हैं। तो वो क्षत्रियों का जो गुण है वो भी वर्णन है भगवद गीता में। जैसे वो हीरोइज्म है, वो बहुत उत्साही है युद्ध करने में। और जो ब्राह्मण का जो गुण है वो भी वर्णन है। तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म होते हैं, एक सब मिलकर एक ऐसा गठन प्रणाली है समाज के लिए, जो कि सारी कुछ मिला के वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि समाज में इस प्रकार सिस्टम सेटअप करे, क्योंकि सब लोग स्पिरिचुअली आध्यात्मिक में रुचि नहीं रखने वाले होंगे, सब लोग आध्यात्मिक में रुचि नहीं रखेंगे। इसलिए ब्राह्मण क्लास ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो लोग इस प्रकार सिस्टम सेटअप करते समाज में जे सब अपना अपना धर्म पालन करे, लेकिन वो एक्चुअली भगवान को तोषण करेंगे। यज्ञ वही विष्णु भगवान को संतुष्टि के लिए ही होगा। जैसे आप इस्कॉन में आप देखिए प्रभुपाद जी के सोसाइटी में हर व्यक्ति छोटा से छोटा काम कर रहा है, अपना गुण के अनुसार हो और भक्ति के हर कार्य तो महत्वपूर्ण ही है, तो भक्त तो जानते हैं। इसलिए कर्म योग जो है वो बुद्धि योग है, बुद्धि योग है, जो शांक योग है, जो स्प्रिट जो आध्यात्मता और भौतिकता की अंतर वो समझते हैं और अंतर को समझने के कारण वो बुद्धि योग अपनाते हैं, कर्म योग अपनाते हैं। योग मतलब भगवान को समर्पण करना, अपना सारे कर्म भगवान को समर्पण करना। यज्ञ वही विष्णु, तो भगवान विष्णु के लिए कार्य करना। तो ब्राह्मण क्लास वो इस प्रकार सेटअप करते हैं कि समाज में हर व्यक्ति वो जो भी करे वो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही हो। लेकिन वर्तमान जो ब्राह्मण क्लास है, जो इंटेलिजेंट क्लास है, आप देखिए इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन में भर चुका है वर्तमान में, जिसके कारण समाज में बहुत उत्पात फैल जाता है। तथाकथित जो गुरु लोग होते हैं, वो उसका अंदर जो ब्राह्मण का जो गुण है वो भी नहीं है, लेकिन वो समाज का वो डायरेक्टर बन जाते हैं, समाज का दिशा देते हैं, वो अंध होता है, जिसका कारण कुछ दिन पहले भी बहुत हादसा हुआ है। उसका अंदर कोई खुद अपना कोई गुण नहीं है, इसलिए राजा को चाहिए जो गुरु को ये गुण संपन्न होना चाहिए। अगर वो गुण संपन्न नहीं है तो उसको उस पद में रखना नहीं चाहिए, उसको उस पद से हटा देना चाहिए। अरे राजा के कर्तव्य है। और यहाँ पर अग्निद्र वो सिस्टेमेटिक वो देखते थे, जो उसका गुण है तो वो उस पद में रहेगा, गुण नहीं है तो नहीं रह पाएगा। इसलिए ये राजा के कर्तव्य है, गुण के अनुसार उनको उस कार्यों में प्रवृत्त करें। लेकिन धोखाधड़ी करके अपना इंद्रिय तृप्ति में इतना प्रवृत्त हो जाते व्यक्ति, वो अपना वो गुण तो है नहीं और समाज को बहुत गलत दिशा में वो ले जाते हैं, जो वर्तमान ब्राह्मण क्लास ऑफ पीपल है। इसलिए योग्य ब्राह्मण चाहिए, जो अपना जो ड्यूटी है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जो पेशा के अनुसार उसका जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का अनुसार वो कार्य करे। और एक्चुअली क्या है, वर्तमान समाज में सब सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सबका गोल ऑफ लाइफ हुआ क्या, अपना इंद्रियों को तृप्ति करना। इसलिए जो यूनाइटेड पीस नेशन वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि प्रभात जी बताते हैं कुत्ता के सोसाइटी है, कुत्ता के सोसाइटी, सब अपना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भूखते रहते हैं, दूसरा को कष्ट पहुंचाते रहते हैं और सब एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। इसलिए कलिजुग है, झगड़ा प्रिय है, अशांति प्रिय है। लेकिन जो ब्राह्मण होते वो शांति प्रिय होते, और शांति प्रिय होने के नाते वो सबको शांति की मार्ग में ले जा सकते। तो जो क्वालिटीज है, गुण है, उस गुण के आधार पर उसको अपना अपना कार्यों में पूर्ण रूप से नियोजित रखना चाहिए। अगर वो गुण से भ्रष्ट हो गया तो उसको तुरंत उस पद से हटा देना चाहिए। अरे कर्तव्य किसका है, ये राजा का कर्तव्य है। गुण कर्म विभाग शो, तो ये वर्णाश्रम धर्म है, ये योग्यता के आधार पर है। जो 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 कास्ट सिस्टम है, प्रभात जी बताते जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत करप्टेड कास्ट सिस्टम है। करप्टेड कास्ट सिस्टम क्या है कि एक दूसरा को डोमिनेट करना, उसको शोषण करना। जो ब्राह्मण है वो सोचते हैं हम समाज के बड़ा हैं, वो नौकर है तो उसको शोषण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्णाश्रम है, जो दैवी वर्णाश्रम है, जो सब लोग स्प्रिट आध्यात्म और भौतिक दोनों को अंतर को समझते, एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर का अंतर को समझते, और उसके कारण यज्ञ वही विष्णु भगवान विष्णु के लिए संतुष्टि के लिए काम करने के नाते वो क्या करते हैं कि सबको, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने এক শ্লোক দিয়া হ্যাঁ, তিনাদপি শুনেছিল তরুরপি সহিষ্ণু অমানি না মানদেন, নমানি না মানদেন, সবকো লেকে চলনা হয় সমাজ মে, সবকো সম্মান করনা হয়। আগর আপকা হাত মে কুছ লোকসান হুয়া হয় তো আপকা পুরা শরীর উসকো উসসে ক্যা হুয়া হোগা, বহুত মানে তানাব আ যায়গা শরীর মে, পুরা শরীর উসকা উসকো কষ্ট কো ঝিলনা পড়তা হয়, শির কো ভি ঝিলনা পড়তা হয়, পেট কো ভি ঝিলনা পড়তা হয়, পেট কো ভি ঝিলনা পড়তা হয়। আগর হাত মে কুছ প্রবলেম আয়া, আগর পেট মে প্রবলেম আয়া তো পুরা শরীর নিস্তেজ হো যাতা হয়। এসলি বশ্য হয় যে সমাজ কো ও ব্যবসা করকে সমাজ কো আর্থিক রূপ সে সচ্ছল করতে, যে শূদ্র হয় যে ওয়ার্কার ক্লাস হয় ও সমাজ কো ও সেবা প্রদান করতে, তো সব জরুরি হয়। আর এসলিয়ে হর কো লেকে চলনা হয়, কিছু কো ডোমিনেট করনা, যে কাস্ট সিস্টেম হয় ও বহুতই মতলব কন্ডেমড হয়, প্রভাতজি বাতাতে করাপ্টেড কাস্ট সিস্টেম হয়, যে ব্রাহ্মণ কা পুত্র হি ব্রাহ্মণ বনেঙ্গে, প্রভাতজি বাতাতে কি বর্তমান সমাজ কা যে এডুকেশন হয়, আজকাল কা যে এডুকেশন হয় ও অ্যাকচুয়ালি সবকো তো শূদ্রই বানা রায়, সব হাইলি এডুকেটেড হতে হ্যাঁ, হোনে কে বাদ ভি ও দোসরা কে দোয়ার মে খটখটাতে, মুঝে কুছ নকরি দে দো নকরি দে দো, কুত্তা কে ভাতি ভুকতে রাতে, যে মুঝে কৃপা করকে আপনার সেবা মে লাগাইয়ে নকরি দিজে। তো বর্তমান এডুকেশন সিস্টেম হ্যাঁ, যে কি সবকো নকর বানাতে শূদ্র বানাতে, তো ব্রাহ্মণ যো হ্যায় ও ক্যা করতে হ্যাঁ, আপনা ডিউটি ঠিক সে পালন করতে, এসা নেই ব্রাহ্মণ সে পৈতা দেখা কে বতাইঙ্গে যে মে ব্রাহ্মণ হুঁ, মে ব্রাহ্মণ কুল মে জন্ম লিয়া হুঁ, মে ব্রাহ্মণ হুঁ, এসা নেই হ্যাঁ। মে দেখা হুঁ কই এক দেশ মে এক সিকিউরিটি গার্ড হ্যায় আর ও বলতে মে ব্রাহ্মণ হুঁ, পৈতা দেখা কে বল রা যে মে ব্রাহ্মণ হুঁ, মে ইন্ডিয়া সে হুঁ আর ইয়া পর সিকিউরিটি কা কাম করতা হুঁ, মে ব্রাহ্মণ হুঁ, তো ক্যা ও ব্রাহ্মণ মানা যায়গা, ও তো সিকিউরিটি গার্ড হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ আপনার ধর্ম ঠিক সে নিভায়েঙ্গে, ব্রাহ্মণ কা ধর্ম ক্যা হয় পঠন পাঠন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ আর উসকা অন্দর সংযম আদি ইত্যাদি গুণ সে পরিপূর্ণ হ্যায়, উসকা সংযম নেই হে, ইন্দ্রতৃপ্তি কা পিছে ভাগ রায়, ও কর রায় নকর কা কাম, লেকিন ও ব্রাহ্মণ নেই মানা যায়গা। এসলিয়ে যে দৈবী বর্ণাশ্রম সিস্টেম ইসকন মে প্রভাতজি এস্টাবলিশ করনে কে লিয়ে প্রভাতজি বাতায়ে, আর ইসকন বহুত জাদা প্রগতি নেই কর পায়ে এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে এস্টাবলিশ করনে কে লিয়ে, কিউকি প্রভাতজি বহুত সারে কন্ট্রাডিক্টরি শব্দ ভি বাতায়ে যে বর্ণাশ্রম ধর্মকে এস্টাবলিশ কে লিয়ে, জৈসা কি প্রভাতজি বাতায়ে কি যে বর্ণাশ্রম হ্যায় ও এক ব্যক্তি কো কৃষ্ণ ভক্তি মে প্রবেশ করনে কে লিয়ে ও এক সিঁড়ি হয়। আর প্রভাতজি এ ভি বাতায়ে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম হ্যাঁ ও এক দূসরা কো শোষণ করতে, যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম হ্যায়। আর ইয়া পর আম দেখ সকতে হ্যাঁ সাস তো ইয়ে হ্যায় কি আজকে প্রধান শাসকগণ সবই প্রকারকে পাপময় কার্য কা বিশেষ রূপসে ব্যবিচার মাদক দ্রব্য সেবন পশুবধ তথা দুধ ক্রীড়া কা সূত্রপাত করতে হ্যাঁ। তো আজকা সমাজ মে আপ দেখিয়ে পাপ কর্ম সে ভরা হুয়া হ্যায়, তো বর্ণাশ্রম ধর্ম এস্টাবলিশ করনা বহুত জরুরি হ্যায়, কমসে কম আপনা আপনা ডিউটি ঠিক সে পালন করে, জেসে ইয়ে ঝরে পাপ কর্ম কই এক দেশ মে বিশেষ করকে সিঙ্গাপুর মে আপ ইয়ে ড্রেস মে যা নেই সকতে, ওপর প্যান্ট শার্ট পেন কে জানা পড়েগা, প্রপাত ভি উস দেশ মে ঘুষ নেই পায়ে, কিউকি উস দেশ কা যে ইকোনমিক কাঠামো হ্যায় ও ইস পাপকর্মকে আধার পর হ্যায়, ইয়ে জুয়া খেলনা বড়া বড়া কেসিনো খুল কে রাখা হ্যায় যে ইসি সে উসকা দেশ মে পয়সা আতা হ্যায়, আজ ইন্ডিয়া মে ভি ইস পাপকর্মকে আধার মে আজ ইকোনমিক কাঠামো খারা হ্যায়, যে কি নেই হোনা চাইয়ে, জুয়া সে কেসিনো খুল কে রাখা হ্যায় উসে পয়সা আতা হ্যায়, फिर आप देखो जीव हत्या, बड़ा बड़ा कसाईखाना खुल के रखा है, एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कि विदेशी मुद्रा आ जाए, जीव हत्या करके, गो हत्या करके। तो ये इकोनॉमिक काठामो के कारण ये पाप कर्म वर्तमान का ये इकोनॉमिक काठामो हो गया, जो इसी के कारण हमारा खाना पीना चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी बताए जो आगे कलियुग का क्या होने वाला है, और वो तो चालू भी हो गया जिससे बारिश नहीं होना। प्रभुपाद जी यह बताते धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होंगे, जग्गात भवति पर्जन्य, यज्ञ करना चाहिए जैसे कि बारिश हो, बारिश होने से अन्न उत्पन्न हो, अन्न उत्पन्न होने से भूतानी जो जीवात्मा वो सारे जीव प्राणी भोजन करके जीवित रहे, फिर यज्ञ करे, फिर बारिश हो, ये सब सिस्टमेटिक है। लेकिन वो ना करके ये पाप कर्म अगर करे तो क्या होगा, सब जीव ये आगे जाके ये भोगने वाले हैं। एक बार उज्जैन में इतना हाल हो गया कि अनावृष्टि, पूरा मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रहा है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है, काफ़ी समय तक बारिश नहीं हो रहा है, और इवन पानी नहीं आ रहा है, मिट्टी का नीचे से भी पानी नहीं आ रहा है, ऊपर से पानी का दूर की बात, नीचे से भी पानी नहीं आ रहा है, तो पानी का कमी हो रहा है, चारों ओर हाहाकार मच गया, सारे मीडिया वाले सब इधर उधर के बात लिख रहे हैं। अभी इस्कॉन में आया और इस्कॉन के जो उज्जैन के भक्तवृंद वो वहाँ पर रोज कीर्तन करते हैं, और सिर्फ सब हर जगह में पानी नहीं है, पूरा सिटी में पानी नहीं है, सिर्फ इस्कॉन में एक कुआ है जहाँ से पानी निकलता है, और वही पानी सब जगह में सप्लाई कर रहा है। तो सब चकित है जो यहाँ से पानी निकलता क्यों, और बाकी कहीं से पानी नहीं निकल रहा है। तो सब इस्कॉन में आए और मीडिया लोग पूछते हैं महाराज को, भक्तिचार परम पूज्य भक्तिचारी महाराज को, तो महाराज बताते यज्ञ करो, यज्ञ करने से पानी आएगा, और यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, आप पूरा स्थिति हमारा साथ योगदान करो कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करने से बारिश आएगा। तो मीडिया लोग पूछते बहुत कठोर कठोर प्रश्न पूछते, क्या आप गारंटी दे सकते हैं जे पानी बारिश होगा, बोले हाँ पानी तो आएगा, लेकिन ऊपर से आया नीचे से आया कैसा, कहीं पानी तो आएगा। तो महाराज ऐसा बता दिया, और अभी लेकिन कोई तो कीर्तन में भाग नहीं लिया, सिर्फ इस्कॉन के भक्त ही कीर्तन करने लगे, और इस्कॉन से ही पानी निकल रहा है, बाद में सबका मिट्टी से भी पानी निकालने लगा, सब लोग सोचा जो हमें भी कीर्तन करना चाहिए, कुछ तो सज्जन भाग लेते हैं। तो देखिए यज्ञात भवति पर्जन्य, अगर हम यज्ञ ना करें, आज यज्ञ भाई विष्णु और कलियुगे यज्ञ क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञ हस्मी, भगवान बताते भगवान के नाम कीर्तन ही यज्ञ है। और प्रभुपाद ये सब देखते हुए प्रभुपाद जी अलग अलग जगहों में अपना भक्त को भेज दिया कलियुग का जो दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इस पूरा मानव जाति को। तो एक महान भगवान के भक्त होते कितना कंपैशन होता है उनके हृदय में, इतना कंपैशन है वो उतना बुढ़ा उम्र में भी, उन्होंने 36 साल उम्र में भी अपना भजन वृंदावन में कर सकते थे आराम से, लेकिन इतना कष्ट उठा के उन्होंने गए अपना गुरु का आदेश से, और पूरा संसार में इस कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। यज्ञार्थ कर्म न अन्यत्र लोक हम कर्म बंधन, इसलिए हमें कर्म किस लिए करना चाहिए, यज्ञार्थ कर्म न, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म ना करें तो अन्यत्र क्या होगा, लोक हम कर्म बंधन, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध में अर्जुन भी युद्ध किया, और कुरु जो सैनिक है वो लोग भी युद्ध किया है, लेकिन अर्जुन भी युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध क्या है, मुक्ति की मार्ग खुल गया उनके लिए, क्योंकि भगवान का आदेश से किया है, और वो अपना इंद्र तृप्ति के लिए, लोक हम कर्म बंधन, वो अपना कर्म में फास्ट कर्म के कारण किया। इसलिए हमें भगवान का आदेश से करना है। বর্ণাশ্রম আচারবধ পুরুষেন পরোপমান বিষ্ণু আরাধ্যতে পন্থা না অন্য তত্ত্বস কারণম। তো যে বর্ণাশ্রম জো হায় জেসে কি এক হায় বর্ণ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র এ গুণকে আধার পর হ্যায় আর এক হায় আশ্রম যো আধ্যাত্মিক হ্যায় যো আধ্যাত্মিক উন্নতি কে লিয়ে হ্যায় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কে লিয়ে আশ্রম হ্যায় যে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। তো কলিযুগ মে প্রভাতজি নে শিল চৈতন্য মহাপ্রভু নে দেখা ইস কলিযুগ মে যো স্থিতি হ্যায় তো ইহাপর উনে সিধা যো বর্ণাশ্রম সিস্টেম মে যো সর্বোচ্চ হ্যায় যো প্রেম প্রয়োজন হ্যায় ওই দে দিয়া উনে এসলে চৈতন্য এসলে বাততে অতপুম্বি দ্বিজ শ্রেষ্ঠা বর্ণা বর্ণাশ্রম বিভাগস্য ছ অনুষ্ঠিত পুংশ ছ অনুষ্ঠিত ধর্মস্য সংসিদ্ধি হরিতোষণম। হরিতোষণ করলে লিয়ে হ্যায় আগর হরিতোষণ নেই হো রায় হরি সন্তুষ্ট নেই হো রায় তো ইয়ে সে শ্রম এভি কেবলম। তো বাততে চৈতন্য মহাপ্রভু পুছতে রায় রামানন্দক যে রায় রামানন্দ বতাইয়ে যে বর্ণাশ্রম কা আগে বাততে রায় রামানন্দ পুছতে প্রভু কহে রায় কহে কৃষ্ণ কর্ম অর্পণ সর্বসাধ্য সার কৃষ্ণ কো হমে সারে কর্ম অর্পণ করনা হে এই সাধ্য কি সার হ্যায় তো উসকা মতলব ভগবদ গীতা মে হ্যায় যত কলসি যদস্নেসি যজ্ঞ হসি দজাসি যত যত তপস্যসি কন্তিয় তৎকৃষ্ট মদর্পণম। লেকিন এই কলিযুগ মে চৈতন্য মহাপ্রভু নে দেখা ইস কলিযুগ মে তো সব আপনা আপনা কর্ম অর্পণ নেই করেঙ্গে ভগবান কো শিল রূপ গোস্বামী দিয়া হ্যায় যে 50% অফ ইনকাম ভগবান কো দেনা চাইয়ে অলগ অলগ ছোটা সোসাইটি মে তো হ্যায় 10% দেতে আর ইস্কন মে তো 50% রূপ গোস্বামী আর ওই প্রভাতজি ও এক লেটার মে বতায়া মেক শিওর দ্য ডিভোটিস আর গিভিং 50% অফ দেয়ার ইনকাম টু ইস্কন ফর প্রিসিং কৃষ্ণ কনসাসনেস যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারকে লিয়ে ভক্ত আপনা 50% দে ইনকামকে। লেকিন কলিযুগ মে দেখে চৈতন্য মহাপ্রভু দেখ পাতে থে যে আগে ক্যা হোনে বালা কি ভক্ত লোক আপনা কর্ম অর্পণ নেই করেঙ্গে ভগবান কো যো ভি হ্যায় যো সমাজকে আদমি হ্যায় ও কর্ম অর্পণ নেই করেঙ্গে তো উসকে লিয়ে ক্যা ক্যা কিয়া বলে ইহো বাহ্য আগে কো আর। তো রায় কহে সধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার আপনার যে ধর্ম হ্যায় সধর্ম হ্যায় আপনার স্বভাব কে অনুসার যে ধর্ম হ্যায় আপনার স্বভাব কে অনুসার যে ধর্ম হ্যায় ক্যা হ্যায় জেসে কি গুণ হ্যায় আপনার ও তো একবিতক্য গুণকে আধার পর হ্যায় গুণকে আধার পর যে কার্য হ্যায় ও ত্যাগ করনা হ্যায় উসকে আগে আনা হ্যায় গুণকে আধার গুণচে পরে হোনা হ্যায় কি ভগবান বিশুদ্ধ সত্যমে হ্যায় এসলিয়ে হামে বিশুদ্ধ সত্যমে প্রবেশ করনে কে লিয়ে হামে ভি বিশুদ্ধ সত্যমে আনা হ্যায়। তো সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ ইস তিন গুণকে আধার পর যে বর্ণ হ্যায় যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হ্যায় ও গুণচে পরে আনা পড়েগা। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে হয় যে সধর্ম ত্যাগ সর্বসাধ্য সার যজ্ঞার্থ কর্ম বলে ইও বাহ্য হ্যায় আগে কৌহার তো চো বাততে সধর্ম ত্যাগ মতলব সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম তাম সর্বপাপেভ্য মুখ্যাই স্বামী মহাশুচ। সধর্ম ত্যাগ মানে সব আপনা আপনা গুণ করছে ভগবানকে পূর্ণ শরণাগত হো জানা। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বাততে আগে বাততে জ্ঞান মিশ্র ভক্তিকে বারে মে আমি মতলব ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ একদম সন্ন্যাস সন্ন্যাস লেভেল মে যে ভক্তি যোগ হ্যায় যে সবকুশ ভগবানকে মে সমর্পিত করকে যে ভগবানকে বাণী কো প্রচার করনে কে লিয়ে যো স্তর হ্যায় তো ও হ্যায় জ্ঞান মিশ্র ভক্তি। তো বলতে ইহো বাহ্য আগে কো আর তো বলে জ্ঞান শূন্য ভক্তি ইহো বাহ্য আগে কো আর ইহো হয় ज्ञान मिश्र भक्ति बोलते यो है, सॉरी ये दो जगह में चैतन्य महाप्रभु बता यो है, फिर आगे ज्ञान मिश्र ज्ञान शून्य, फिर आगे बताते प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार, यो है दिस इज ऑल राइट। अभी आपने ठीक बताया, प्रेम भक्ति ही सर्वसाध्य सार है, परम प्रेम प्रयोजन है। तो प्रेम जो प्रयोजन जो सिद्धि है मानव मनुष्य जन्म का, वही चैतन्य महाप्रभु ने दिया है सीधा आके। अभी देखिए इस्कॉन एक ऐसा बड़ा सोसाइटी है जहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुण लेके आए हैं और उसको उसी में ही करना है, अलग से कोई योग्यता अर्जन करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभात जी बताते उस गुण को कृष्ण की सेवा में लगाना है और उस गुण के अनुसार कार्य करना है, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि इस गुण से परे आ जाए, क्योंकि प्रेम प्राप्त करे, प्रेम भक्ति को प्राप्त करे। तो इस्कॉन जब दैवी वर्णाश्रम है जो अपना अपना गुण का अनुसार वो कार्य करे, लेकिन अल्टीमेटली ये सब गुण से परे जो प्रेम भक्ति है वो प्राप्त करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया जो ये चारी ओर प्रसार हो जाए, एका 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 की माला कर हमें कहाँ कहाँ जाबो, किसको किसको दू में इस प्रेम फल, प्रेम की एक वृक्ष लगाया और उसमें बहुत सारे फल आया है, और इस प्रेम जो प्रयोजन मनुष्य की जो असली गोल ऑफ लाइफ जो ब्रह्मा की दुर्लभ प्रेम है वो चैतन्य महाप्रभु देने आए। तो बोले मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊँ, इसलिए उन्होंने सबको आदेश किया, सब बाँटो पृथ्वीते आसे जतो, भविष्यवाणी किया पृथ्वीते आसे जतो नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, मेरा नाम हर जगह में प्रचार होगा। तो भगवान के वाणी चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार करना, इसका मतलब भगवत भक्ति का प्रसार करना, कृष्ण को आदेश जो भक्ति है वो चारी ओर फैलाना। तो ये इसके लिए प्रभुपाद ने क्या किया, अपना भक्त को हर जगह में भेज दिया, जाओ तुम चाइना चला जाओ, जाओ तुम दिल्ली में यही उतर जाओ। एक भक्त ट्रेन में पूछा, एक आदमी प्रभुपाद को, ट्रेन से प्रभुपाद जी जा रहे थे और एक आदमी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो सब जगह में कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहे हैं, हमारा दिल्ली में तो प्रचार नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी तुरंत अपना शिष्य को बोला, तुम इनका साथ उतर जाओ ट्रेन से, कुछ नहीं धन संपत्ति कुछ नहीं है, जब एक सज्जन मिल गया तो प्रभुपाद जी उनका साथ भेज दिया, जब वो तुम्हें मदद करेंगे तुम प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस पृथ्वी के हर जगह में हर नरगोर में भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार हो, जिसके कारण सब लोग भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। और ये कली का प्रभाव से प्रभुपाद जी बताते, तब जब तक लोग भक्ति करेंगे इस कृष्ण भक्ति प्रसार होगा, जितना प्रसार फैलेगा और जितना इसका प्रभाव फैलेगा उतना जो तृतीय विश्व युद्ध वो दूर चला जाएगा, नहीं कभी भी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और इस बार तृतीय विश्व युद्ध होना मतलब सबके पास पूरा तैयारी है, 2-3 सेकंड लगेगा पूरा दुनिया को नष्ट करने में, ऐसे ऐसे सब बना के बैठे हैं। और वो सब किसका हाथ में है, पूरा हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति के हाथ में है, वैसा बड़ा बड़ा शक्ति परमाणिक बम आदि। तो तृतीय विश्व युद्ध लगेगा तो सब तुरंत खत्म। तो प्रभात जी वो सब देखा है, देख के वही कृष्ण भक्ति प्रसार के लिए उन्होंने पूरा ताकत लगा दिया। महान्तेर कार्य यही तारिते पामोर निज कार्य नाई तबु ता जान तार घर। एक महान तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना कोई अपना पर्सनल कुछ नहीं है, मोटिव नहीं है जिसमें हमारा कुछ है नहीं, ये सिर्फ समाज के लिए देश के लिए जाति के लिए ये भगवान के प्रसन्नता के लिए उन्होंने घूमते रहते। और प्रभुपाद 70 साल उम्र में 14 बार पृथ्वी को प्रदक्षिण किया है इस कृष्ण भक्ति को प्रसार करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम जेन तेन प्रकार कृष्ण मनो कृष्ण निवेश आयो, मन को कृष्ण के कृष्ण में निवेश करना है। और वो कैसे हो सकता है, कृष्ण के कृष्ण में मन लगाना है। और वो कैसे हो सकता है, लोकनाथ गोस्वामी को प्रार्थना करते श्री नरोत्तमदास ठाकुर, लोकनाथ प्रभु तुम्हें दया करो मोरे, राधा कृष्ण शरण जन सदा चित्त स्फुरे। हे लोकनाथ प्रभु, एक शिष्य को चाहिए चाहिए देखिए अपना गुरु के चरण में प्रार्थना करे, जैसे कि हमारा मन लागे कृष्ण भक्ति में। और इतना सारे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कृष्ण में हमारा मन लागे। जे इसलिए बताते हैं, भगवान के वाणी श्रवण करने से भगवान के गुणगान श्रवण करने से भगवान में हमारा मन निविष्ट हो जाते हैं। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देंगे, प्रभुपाद जी कई जगह में बताया एब्जॉर्प्शन, भक्त को चाहिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समाधिनाम, प्रभुपाद जी समाधिनाम का ट्रांसलेशन किया एब्जॉर्प्शन। और प्रभुपाद जी ये भी बताए इम्बाइब, माने इम्बाइब मतलब उसमें माने तल्लीन हो जाना। तो देखिए एक स्पॉन्ज है, और उस स्पॉन्ज को हम पानी में डाल दिया तो पानी क्या है, पानी को शोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब प्रेशर आता है तो पानी सब निकल जाता है। तो भक्त को जब टेस्ट आता है, प्रेशर आता है, तो देखा गया बहुत सारे सोर के चला जाता है भक्ति से। एब्जॉर्प्शन का यही है ना, हमने देखा है टेस्ट आता है तो चला जाता है। तो इससे आगे है एडजॉर्प्शन, जैसे कि पाथर को आप पानी में डुबा दो तो पानी में, ये मेरा गुरु महाराज बताते, पानी में डुबा देने से क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और पाथर नीचे, किंबा प्लास्टिक, फिर वो बाहर निकालो तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब शुष्क है। मतलब प्रैक्टिस कर रहा है एक्सटर्नली, कोई इंटरनली कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी भक्ति ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। इसलिए आ गया इम्बाइब, प्रभुपाद जी बताते इम्बाइब आने इस माने पी लेना। एक शिष्य को चाहिए कृष्ण भक्ति में पी लेना, जिस प्रकार आप सूखा चना को पानी में डालो, सूखा चना को पानी में डालने से क्या होगा, वो चना आप दूसरा दिन सुबह देखो आप वो चना फूल गया, सारे पानी चना के अंदर घुस गया। अभी आप उस चना से पानी निकाल सकते हो, जैसे पांच से पानी निकाला, चना से पानी नहीं निकाल सकते हो आप, जितना भी बड़ा मशीन में क्यों ना डालो। तो वो है इम्बाइब। तो भक्त को अपना गुरु का आदेश इस प्रकार धारण करना है, इस प्रकार धारण करना है प्रभुपाद जी का आदेश, जो खुद इंस्ट्रक्शन बन जाए, इसको बोलते इम्बाइब हो जाना कृष्ण भक्ति में, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति को पी लेना, ये है प्रभुपाद जी का इच्छा। और जिसके कारण हम कृष्ण भक्ति में टिके रह सकते। टाइम हो गया, कोई प्रश्न? गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।